धवला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर 20 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूण सिद्धे विरुद्धसयले अज्जत्थ बहित्थ बंधनं मुक्के भक्तिये अहं नमिऊं पुनो पुनो बंधनं वोक्षम्।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड और इस चौदहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 165 पर हम आगे 165। कल थी क्या? नहीं, अच्छा एक वीक नहीं थी, कोई बात नहीं। देखो ये वर्गणाओं की प्रकरण, जो वर्गणा किसको कहेंगे तो एक एक सिंगल परमाणु को एक टाइप की वर्गणा कहेंगे, इसको एक प्रदेशी उद्गल द्रव्य वर्गणा कहेंगे। फिर द्विप्रदेशी वर्गणा, वर्गणा का अर्थ होते वो सारे ही दो प्रदेशी जितने हो गए स्कंद उस सबको कहेंगे द्विप्रदेशी वर्गणा। तीन प्रदेशी, चार प्रदेशी, ऐसे उत्कृष्ट संख्या तक एक एक परमाणु से बढ़ते हुए वो सारे अलग अलग वर्गणाएं हैं। एक श्रेणी वर्गणा इसको कहते हैं, वो एक प्रदेशी द्विप्रदेशी एक एक से बढ़ते हुए, पर दो से लेकर उत्कृष्ट संख्या तक सबका नाम क्या है तो संख्यात प्रदेशी। जघन्य परिता संख्यात से लेकर उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात तक के एक एक से बढ़ते हुए सारी वर्गणाओं का नाम है असंख्यात प्रदेश। तो उसमें अभी वल्पभूत्व चल रहा है। नंबर ऑफ परमाणु वो उसकी अवगाहना नहीं बता रहे, नंबर ऑफ परमाणु रहते ना, पर दो प्रदेशी भी कहीं कहीं स्कंद पाए जाते हैं ना। फिर अनंत प्रदेशी, अनंत तक अभी आगे जाना है ना, अभी तो हम असंख्यात तक आ गए, उत्कृष्ट असंख्यात थे। यानी तो उसके वेरिएशंस कितने हो गए, जघन्य असंख्यात से लेकर एक एक से बढ़ते हुए उत्कृष्ट असंख्यात तक, तो उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्लस वन, और उसका प्रमाण कितना है तो उन्होंने कहा असंख्यात लोक प्रमाण है। फिर अनंत की कितनी होगी तो जघन्य अनंत से लेकर उसके आगे उत्कृष्ट अनंत, अनंत नहीं जाएगा क्योंकि आगे की कुछ वर्गणाओं के नाम हमको मालूम है। जो जीव ग्रहण करता है उसका नाम है पहला आहार वर्गणा, यानी आहार वर्गणा में एक परमाणु कम तक वो सारी जो अनंत वाली है, परंतु उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। अल्पभूतव में पहले किसको लिया, परमाणु द्रव्य वर्गणा जो है वो सबसे स्तोक है। पेज नंबर 163 से ये अल्पभूतव हम देख रहे थे, तो उसका प्रमाण एक है तो कहे देखो ऐसे एक सिंगल परमाणु वाले अनंत है, परंतु टाइप कितना, एक प्रदेशी बस। संख्यात प्रदेशी में दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, चार प्रदेशी, पांच प्रदेशी, उत्कृष्ट संख्यात तक, तो उसमें एक वेरिएशंस कितने हो गए, उत्कृष्ट संख्यात माइनस एक, तो वो संख्यात गुणा कहेंगे। गुणकार क्या है तो एक कम उत्कृष्ट संख्यात गुणकार है। असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गणा कितनी होगी तो असंख्यात गुणी, यानी उसके असंख्यात टाइप है एक एक के वेरिएशन, तो उसको असंख्यात गुणी कहेंगे। अब उसका प्रमाण छोड़ देते हैं, अभी उसके नीचे दो लाइन नीचे, अभी इसके बाद वो अनंत वाली यानी आहार वर्गणा के नीचे वाली नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि अल्प बहुत्व में ये जो नंबर ऑफ टाइप जिसको हम कहेंगे एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए, तो चौथे नंबर पर आहार वर्गणा ली। अभी उसके तीन लाइन देखो, देखो हाँ? हाँ परमाणु की संख्या कितने वो लेना, पर वो एक एक से बढ़ते हुए ऐसे कितने भेद है उसको लेना है। उसमें अनंत परमाणु है परंतु उसके भेद कितने हो गए, देखो देखो ये चार नंबर जो हमने एक दो तीन चार पांचवी लाइन में आहार द्रव्य वर्गणाएं अनंत गुणी है क्योंकि वो असंख्यात थी टोटल और ये अनंत गुणी हो जाएगी क्योंकि उसमें भले नंबर ऑफ परमाणु भी अनंत है परंतु उनकी संख्या ने जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के भेद कितने हैं तो कहते अनंत है। कितने अनंत है तो वो अभव्यम से अनंत गुणा वाला होगा। हाँ भेदों की अपेक्षा अल्पबहुत उसके यानी एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए उसके कितने भेद पाए जाएंगे उसको यहाँ कहेंगे। यहाँ लिखा ना गुणकार अभिवन से अनंत गुणा बताया। अब पांच नंबर उसके चार लाइन नीचे नीचे से छठी लाइन उससे तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा अनंत गुणी है। उससे दो लाइन नीचे भाषा द्रव्य वर्गणा अनंत गुणी, हमने कल पढ़ा था इसलिए फास्ट जा रहे हैं। उसके बाद मनो द्रव्य वर्गणा अनंत गुणी यानी जीव के ग्रहण योग्य जो है एक से दूसरी दूसरे से तीसरी अनंत गुणी है। अनंत गुणी कहने से केवल उसकी नंबर ऑफ परमाणु नहीं लेना, नंबर ऑफ टाइप्स जघन्य से भेद 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 कितने हैं। नंबरिंग क्या है ना यानी इसमें हमको भेदों का अल्पबहुत्व लेना है। नंबर ऑफ टाइप्स देखो सातवें नंबर पर मनोद्रव्य वर्गणा, आठवें पर कारमान द्रव्य वर्गणा। अभी हमने बीच में अग्रहण वर्गणा छोड़ी थी, अग्राह्य वर्गणा और आहार वर्गणा के पूर्व वाली भी एक छोड़ी थी
अनंत।
उसको यहाँ लेना है नौवे नंबर पर यानी असंख्यात प्रदेशी से लेकर आहार शरीर द्रव्य वर्गणा के पूर्व तक वो अनंत गुणी है। अभी उसकी चर्चा छोड़ो। अब जो 164 पर नीचे का पैराग्राफ उसके बाद आहार और तेजस के बीच वाली अग्रहण वर्गणा वो अनंत गुणी है। 11 नंबर पर उसके नेक्स्ट वाले अग्रहण द्रव्य वर्गणा वो अनंत गुणी है। फिर भाषा वर्गणा के आगे और मनोवर्गणा के पूर्व वाली अग्रहण वर्गणा उससे भी अनंत गुणी है। फिर मनोवर्गणा के आगे और कारमान वर्गणा के पहले पूर्व में वो भी अनंत गुणी है। 13 नंबर हो गए। अभी उसके दो लाइन नीचे लास्ट में ध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा की सब एक श्रेणी द्रव्य वर्गणा अनंत गुणी है। ये 14 नंबर है। ऐसे भी वर्गणा का भी नंबर 14 है और अल्पभूतव में भी इसका 14 नंबर है। केवल वो अग्रहण वाली जो थी ना
वो
बीच में आ गई नीचे से ऊपर। उसके बाद 15 नंबर पर जिसको सांतर निरंतर कहते उसी का दूसरा नाम है पेज नंबर 164 कल की थोड़ी रिविजन कर रहे जिसको हमने 15 नंबर दिया था अल्पभूतव में अचित्त अध्रुव स्कंद द्रव्य वर्गणा इसका दूसरा नाम है सांतर निरंतर वर्गणा। उसमें भी एक एक परमाणु के डिफरेंस से कितने भेद हो गए तो कहते उससे भी वो अनंत गुणी है। 14वें नंबर से वे 15वें नंबर में उसके भेद अनंत गुणा हो गए और उसका गुणकार कितना है तो जीवन से अनंत गुणा वाला है। अभी उसके बाद प्रत्येक शरीर वर्गणा के पूर्व में जो पहली ध्रुव शून्य वर्गणा है वो अनंत गुणी है
आकाश प्रदेश के।
हाँ उसको एक श्रेणी आकाश प्रदेश वर्गणा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ तो परमाणु द्रव्य वर्गणा नहीं है, हमको केवल उसको कितने प्रदेश कितने परमाणु का ये हो सकता है इमेजिनेशन ही है, ऐसी एग्जिस्टिंग कोई है ही नहीं है। परंतु उसके भेद कितने हो गए तो एक एक परमाणु से भेद हुए वो सारे ध्रुव शून्य है। हाँ, कायम वो उसका अस्तित्व कभी नहीं पाया जाएगा ये उसका नाम है। फिर 17 नंबर पर नीचे से दूसरी लाइन प्रत्येक शरीर वर्गणा की सब एक श्रेणी वर्गणाएं असंख्यात गुणी है यानी वो अनंत थी उससे असंख्यात गुणा वो कितना उसका गुणकार है तो पल्ले के असंख्यात विभाग गुणकार है। मैंने पूर्व जो हमने देखी थी 16 नंबर पर, वो 16 नंबर पर उसके टाइप अनंत है, उससे ये असंख्यात गुणा वाला अनंत होगा। अब यहां तक तो हमने पढ़ा था, पहली लाइन से यहां पढ़ते हम प्रत्येक शरीर वर्गणा के आगे और बादर निगोद वर्गणा के पूर्व दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा की सब एक श्रेणी आकाश प्रदेश वर्गणाएं अनंत गुणी है। यानी बीच वाली जो ध्रुव शून्य वाली वो उससे अनंत गुणी है। गुणकार क्या है? अनंत लोक गुणकार है। यानी एक लोक दो लोक ऐसे अनंत लोक, इतने उसके भेद हो गए एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए। यथा एक बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव को स्थापित कर पुनः इसके अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण औदारिक शरीर तेजस शरीर और कारमान शरीर के परमाणुओं को, ये परमाणु इतने हैं। अब ये तो शरीर की राशि है, उसके विसरसोपचय अपने अपने अलग है, वो कितने होते हैं? तो सब जीवों से अनंत गुणे अपने अपने विसरसोपचय से, क्योंकि औदारिक का अपना विसरस जुदा है, तेजस का जुदा है, कारमान का जुदा है, इसलिए अपने अपने विसरसोपचयों से गुणित कर, क्योंकि एक परमाणु के साथ इतने, तो हमने इतने जो सारे देखे थे अभव्यों से अनंत गुणे उसके साथ कितने और एकत्र कर, गुणित करके एकत्र करना, सबकी टोटल करना, गुणकार रूप से स्थापित करने पर एक जीव का द्रव्य प्रमाण होता है। यानी एक प्रत्येक शरीर जीव के साथ इतना द्रव्य होता है, उसके 6 पुंज लेने। तो ऐसे अग्निकायिक में हमने देखे थे कितने ही प्रत्येक शरीर वाले, उनका एक स्कंद पूरा जो अग्नि जो लता दाह वगैरह उन्होंने बताया, दवा नल वगैरह होते हैं उसकी बातें। पुनः इसका एक जीव के लिए इतना परमाणु का प्रमाण देखा, इसका पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण गुणकार स्थापित करने पर उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है। यानी क्या है कि पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण अग्निकायिक जीवों का समूह जो है उत्कृष्ट रूप से, तो सबके अपने अपने 6 पुंज देखना और सबकी टोटल करना, वो ये उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा कहलाएगी। ये जो अभी हुआ है वो ध्रुव शून्य वर्गणा अनंत गुणी है, वो 18वीं थी बादर निगुण वर्गणा के पूर्व वाली।
यहाँ पे प्रत्येक शरीर वर्गणा खाली पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाणी भेद बताए,
ये प्रत्येक शरीर वर्गणा उत्कृष्ट जो है 17 नंबर वाली है। हाँ बोलो।
जो प्रत्येक शरीर वर्गणा के भेद बताए वो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाणी है नहीं, क्योंकि क्या बताए
असंख्यात
पर्याप्त जीवों को स्थापित कर पुनः उससे अनंत गुणे और सिद्धों पे अनंत व्यापार प्रमाण औदारिक तेजस और कामन शरीर में परमाणु का सब पुंज मिल के जगन्य है प्रत्येक शरीर वर्गना।
देखो ये अभव्यों के योग्य प्रत्येक शरीर वर्गना की बात चल रही है, प्रत्येक शरीर वर्गना का जगन्य कहाँ देखा था याद है?
तो प्रत्येक शरीर का 14वें के अंत,
14वें के अंत में उसके सारे विकल्प हमने देखे थे जगन्य में। यहाँ तो एक का इतना है तो पल्ले के असंख्यात विभाग का कितना है, ये त्रैराशिक निकालने के लिए सारी बात बता रहे। हमें उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा कितनी है उसकी बात यहाँ देखनी है। और उसकी लोक में तो असंख्यात है, अनंत जीव बड़ा है। देखो इनके भेद अलग बात है, उसमें नंबर ऑफ परमाणु अलग बात है,
ये स्कंद कितने हो सकते हैं।
देखो अभी ये जो हम उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा बता रहे हैं, तो उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर में परमाणु कितने हैं उसकी बात है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो भेदों की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्या कहें
क्या पे, क्योंकि क्या है कि सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण औदारिक शरीर तेजस शरीर और कार्बन शरीर, उसके परमाणु का सब जीवों से अनंत गुण अपने अपने विश्व।
देखो एक अग्निकायिक जीव के सत्ता में जो शरीर है उतने परमाणु कितने हैं,
ये पूरा पुण्य लिया सिद्धों से अभव्य से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण औदारिक तेजस कार्बन शरीर के पुंज को लिया
ऐसा जगन्य में। हाँ जगन्य में नहीं, एक जीव के लिए।
अच्छा मैं
एक मादर अग्नि का एक की बात चल रही है यहाँ पर। देखो देखो, एक जीव के इतने तो पल्ले के असंख्यात भाग के कितने, ये प्रश्न ये हमको निकालने का तरीका बता रहे। अभी क्या प्रश्न है आपका?
नहीं, मेरे को यहाँ पे अनंत जीव बताए ना, उसका मैं सोच रहा था। एक
कहाँ अनंत जीव बताए?
एक बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव को स्थापित कर पुनः इसके आगे अभ्यवेश अनंत गुण और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण औदारिक शरीर,
औदारिक शरीर के परमाणु की बात है।
अच्छा,
आप औदारिक शरीर नहीं, वो पूरा देखो देखो, एक के जो है ना हिंदी वाला के, एक साथ तीनों को लगाते हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर के, यानी इसका अर्थ ऐसा है, औदारिक शरीर के परमाणु, तेजस शरीर के परमाणु, कारमान शरीर के परमाणु, कितने? अपने अपने अभव्यों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत विभाग। अभी कुछ घोटाला है?
नहीं,
क्योंकि एक जीव के शरीर के परमाणु इतने हैं और एक एक परमाणु के साथ विश्रसोपचय लगा है, कितना? तो जीवन से अनंत गुण, एक परमाणु के साथ। तो औदारिक शरीर के टोटल परमाणु कितने होते हैं किसी गिवन पॉइंट पर?
जीवन से अनंत गुण। औदारिक शरीर के तो जब
कितने हो गए? कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे?
डेढ़ गुणानि गुणित समय प्रबद्ध, संचय कभी कितना होता है? तो समय प्रबद्ध कितना है? अभव्य उनसे अनंत गुणा, तो डेढ़ गुणानी उससे असंख्यात गुणा कर देना।
वो भी
गुणानी कितनी होगी? कर्मों की गुणानी तो पल्लों में है, तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। ख्याल में आई ना बात? यानी जो यथायोग्य है, परंतु उसका प्रमाण कितना होगा? अभव्य उनसे अनंत गुणा, हीनाधिक होगा। जीवों के लिए जो अभव्य उनसे अनंत गुणा कहा है, औदारिक के लिए, औदारिक शरीर के परमाणु कितने हैं? अनंत। कितने अनंत? अभव्य से अनंत गुणा वाले। तेजस शरीर के परमाणु कितने हैं? अनंत। कितने अनंत? अभव्य से अनंत गुणे, परंतु वो अनंत तेजस का औदारिक शरीर के अनंत से अनंत गुणा है। यहाँ तक ख्याल में आई बात? अभी कोई कंफ्यूजन है?
नहीं, नहीं।
देखो, एक जीव के इतने परमाणु और उसके इतने विश्रसोपचय,
तो
यानी टोटल उसकी क्वांटिटी निकाली, तो एट अ टाइम अग्नि का एक कितने अग्नि का एकों का समूह होता है, उसके प्रत्येक शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो पूरा एक स्कंद बन गया है। हमें जो बड़े बड़े जो दावानल वगैरह जो अग्नि दिखते हैं उसकी बात चल रही, तो उनकी संख्या कितनी है? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव है। यहाँ समझ में? ये उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा है। जघन्य हमने कौन सी देखी थी? वो केवली के 14वें गुणस्थान के अंत में, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए जो सारे भेद इसमें पाए जाएंगे। तो ये तो बात उन्होंने 17 नंबर पर ही बताई थी कि प्रत्येक शरीर वर्गणा की एक श्रेणी वर्गणा कितनी है, होगी अनंत, पर पूर्व भेद से असंख्यात गुणी है। अभी यहाँ तो हमारा 18 नंबर का प्रमाण निकालना है, कौन सा? बादर निगोद वर्गणा का। उसके लिए प्रत्येक शरीर वर्गणा का उत्कृष्ट क्या है वो बताने के लिए सब उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया। तो ऊपर से चार और चार आठवीं लाइन में ऐसे आया कि उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा होती है। यहाँ तो समझ में आई बात? पुनः एक बादर निगोद जीव को नहीं, अभी 19 चालू नहीं हुआ है, 18 की बात चल रही। बादर निगोद वर्गणा की, अभी एक बादर निगोद वर्गणा का कितना है, तो इतने बादर जीवों का कितना होगा, इस तरह से वो स्थापित करेंगे। एक बादर निगोद जीव को स्थापित कर इसके पार्श्व में, उसके पार्श्व में, उसके बाजू में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण औदारिक शरीर के, तेजस शरीर के और कारमान शरीर के परमाणुओं को। समझ में आई बात? यहाँ तो के लगाया भी नहीं है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर परमाणुओं को संधि कर दिए, इसका अर्थ इनके परमाणुओं को। अभी उसके विश्रसोपचय कितने हैं? सब जीवों से अनंत गुणे, अपने विश्रसोपचय, अपने कहने से अपने अपने चाहिए। स सग है ना, तो सग से एक चाहिए, ठीक है। परंतु वो अपने कहने से अपने अपने हम गुणित कर और एकत्र कर गुणकार रूप से स्थापित करने पर एक जीव का द्रव्य होता है, यानी उसका द्रव्य कितना है वो बात है। एक बादर निगोद शरीर के साथ कितना द्रव्य है, तो उसके तीन शरीर और उनके विश्रसोपचय, इन सबका पुंज वो है एक जीव के लिए। पुनः इस प्रकार बादर निगोद जीव एक निगोद शरीर में सब जीव राशि के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, ऐसा समझकर। असंख्यातवे भाग प्रमाण है क्योंकि पूरी जीव राशि है, उसमें से तो सिद्धों का प्रमाण माइनस करो, जो संसार राशि है उसमें बाकी निगोद को छोड़कर बाकी सभी तो असंख्यात या असंख्यात लोक वगैरह इतना उसका है, और बाकी जो है वो निगोद है, इसलिए पूरे जीव राशि का असंख्यातवा भाग प्रमाण उसमें है, एक निगोद शरीर में है, और ऐसे निगोद शरीर असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए टोटल उसका असंख्यातव भाग कह दिया, एक निगोद शरीर में पूरे जीव राशि का असंख्यात भाग, ऐसा समझकर असंख्यात लोक से भाजित सब जीव राशि से, यानी कौन सा असंख्यात है तो असंख्यात लोक वाला, क्योंकि जीव राशि में जो असंख्यात लोक प्रमाण निगोद के शरीर है तो जीव राशि को असंख्यात लोक से भाग देंगे तो हमें जो अनंत का प्रमाण आएगा वो एक निगोद शरीर में जीव हो गए, भाजित सब जीव राशि के पहले के एक जीव द्रव्य के गुणित करने पर। फिर से क्या कहना चाहते हैं, अभी देखो थोड़े ये तो सामान्य त्रैरोषिक बहुत कुछ गड़बड़ी वाली बात नहीं है, हमें तो बादर निगोद वर्गणा कैसे घटित करना है तो यानी समझाने के तौर पर एक बादर निगोद जीव है, उसका पूरा परमाणु समूह कितना है, तीन शरीर और उसके विश्रसोपचय मिलकर इतना होगा एक का। ऐसे एक शरीर में बादर निगोद जीव कितने हैं तो अनंत है, कितने अनंत है तो जीव राशि का असंख्यात भाग प्रमाण अनंत है, तो ये अनंत जीवों से इसको गुणा करेंगे तो एक निगोद शरीर में कितने उसके परमाणु होते उसका प्रमाण मिलेगा। देखो फिर मैं इसको पढ़ती हूँ, देखो पहले उन्होंने एक बादर निगोद जीव को स्थापित किया, उसके तीन शरीर और उसके अपने अपने विश्रसोपचय, तो एक जीव का द्रव्य होता है, द्रव्य होता है ना उसके परमाणु पुंज होता है। फिर एक निगोद शरीर में जीव कितने होते हैं तो टोटल जीव राशि का असंख्यात भाग प्रमाण, इसलिए जीव राशि को असंख्यात लोक से भाग देकर पहले के एक जीव द्रव्य के गुणित करने पर, यानी एक जीव द्रव्य का एक बादर निगोद का जितना द्रव्य था उसको उससे गुणा किया, किससे, जीव राशि के अनंत असंख्यात भाग प्रमाण, तो एक निगोद शरीर में जितने जीव है उनका सबका मिलकर टोटल द्रव्य मिला, परमाणुओं का पुंज। यहाँ तक समझ में आई बात। पुनः उसे असंख्यात लोक प्रमाण एक बादर निगोद वर्गणा शरीरों से गुणित करने पर एक पुलवी का द्रव्य होता है, यानी एक पुलवी का द्रव्य कितना होता है तो एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण उसके देह होते हैं, इसलिए पुलवी का एक पुलवी का द्रव्य कितना है। देखो उन्होंने क्या लिया है, एक बादर निगोद जीव उसके तीन शरीर और उसके विश्रसोपचय उनका पुंज इतना है,
और जीवों के असंख्यात
तो एक निगोद देह में कितना होगा,
जीवों के
तो एक निगोद देह में जीव कितने तो अनंत है, कितने अनंत है टोटल जीव राशि का असंख्यात भाग वाला, तो उसमें कितना होगा तो उससे इसको गुणा करेंगे, जिससे धीस इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या गई। यहाँ तक आ गए, ये तो एक निगोद देह की बात है, पुलवी में निगोद देह कितने होते हैं,
असंख्यात लोग।
तो अभी एक पुलवे के लिए असंख्यात लोग से उसको गुणा करेंगे, एक पुलवी में देह कितने असंख्यात लोग, इस संख्या को असंख्यात लोग से गुणा करेंगे तो एक पुलवी में जो परमाणु का पुंज है उसकी बात आएगी यहाँ पर। पुलवी यानी देहों का समूह गुच्छा। देख हमने देखा था आपको है ना, एक स्कंद में अंडर होते, उसमें आवास होते, उसमें पुलवी होती, उसमें देह होते। जैसे मैं पूरा एक हिंदुस्तान है, उसमें इतने राज्य है, उसमें इतने जिले है, उसमें इतने नगर है, इस तरह से जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं वैसे इसमें होते हैं। एक सिंगल सिंगल देह नहीं है, सिंगल सिंगल देह ऐसे अनंत, सॉरी एक जीव, ये एक देह, एक पुलवी। तो इसका प्रमाण निकालने के लिए एक जीव के साथ इतना परमाणु है, तो निगोद के एक देह में जो अनंत जीव है उनके इतने हो गए परमाणु। बहुत है, वही तो अपन जीव अनंत है ना, उसका तेजस कारण हर एक का अलग है, औदारिक भी सबका अलग लिया। अभी कॉमन तो है,
कॉमन लेते हैं
कॉमन, अरे कॉमन है परंतु उसके हर एक के अपने खाते में उसका अपना अपना परमाणु का पूंज जाएगा कि नहीं जाएगा।
औदारिक शरीर तो लोग एक ही है ना,
एक है मान लेते उस, एक है उसके, उसमें अनंत में डिवाइड करके बात कर रहे हैं। एक जीव का अपना है ना, सबके लिए कॉमन है, वो जो कॉमन है उसको हम जितने जीव है उसमें डिवाइड करेंगे तो उसका अपना अपना कहलाएगा। परमाणु को हम डिवाइड करेंगे इसके लिए, हाँ
डिवाइड करने का अर्थ अलग होता है, डिवाइड यानी मान लो 100 है तो 100 लोगों को एक ही दिया ऐसा होगा।
देखो देखो औदारिक शरीर
के 100 के 100 सबको दिए जाएंगे,
नहीं नहीं नहीं
100 को सब सबको दिए जाएंगे तो हम उसको 100 को अनेक बार अनंत बार गुणा करेंगे उसको। ये 100 है यानी देह के परमाणु जितने, एक्चुअली देह के परमाणु अभवियों से अनंत अनंत गुणा ही है।
नहीं उसके साथ विश्वसोपचय होगा ना तो वो तो अनंत गुणा हो जाएगा ना, जीवन विश्वसोपचय गिने के
वो अनंत गुणा हो जाता
है, हो जाएगा तो।
पर औदारिक शरीर के परमाणु ये तो सबके लिए कॉमन है, फिर भी जो एक एक जीव की अपेक्षा उसका कथन आता है और हर एक के खाते में कितने जाएंगे उसकी बात है,
कितने जाते हैं वो समझ में नहीं
आता। इमेजिन करना है बस,
इमेजिन करना है, लेकिन अभी हम जैसा इमेजिन करते 100 है और जीव भी 100 है,
एक एक है
तो हर एक के खाते में एक एक जाएगा ऐसा मैं पूछूंगा।
देखो क्योंकि परमाणु की संख्या अवयवों से अनंत गुणे होती है,
प्रत्येक द्रव्य का अनादि अनंत काल अपना अपना है, अनादि अनंत है लेकिन अपना अपना अनादि अनंत। वैसे यहाँ ये जो औदारिक शरीर के जो परमाणु है वो हर एक को ऐड करते जाएंगे ना अपन उसमें,
हाँ हर एक के ऐड करते जाएंगे,
यानी तेज शरीर प्लस कार्मण शरीर प्लस औदारिक शरीर,
हाँ हर एक के अपने अपने ऐड
कर। निगोद में भी प्रत्येक जीव का औदारिक शरीर का जो उदय हो रहा है उसके साथ औदारिक शरीर के परमाणु अपने अपने वो मिलके एक जीव एक शरीर बनेगा।
देखो सबके मिलकर जो इसको कहेंगे ग्रहण एक ही है पूरे का मिलकर टोटल का, हाँ। सबकी पर्याप्ति जैसी,
हाँ खत्म पूरी हो जाएगी तो अरे विग्रह गति से आके पहले समय से जीव शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है तभी सभी जीव का मिलके ग्रहण होगा, तो वो भी
पर्याप्ति पूरी होने की जरूरत नहीं ग्रहण करने के लिए।
हाँ बराबर, ग्रहण चालू किया तो अनंत जीव है तो अनंत जीव के औदारिक शरीर के परमाणु एक इकट्ठा वो लोग ग्रहण करते हैं ऐसे बता रहे हैं, और पीछे डिवाइड किया उन्होंने।
अरे डिवाइड मत करो, डिवाइड हम इमेजिन कर रहे हैं, डिवाइड कुछ नहीं करना है, सबके मिलकर एक ही है क्योंकि एक शरीर। देखो यहाँ कंटिन्यूस एक एक समय में एक एक जीव उत्पन्न होगा, अनंत जीव उत्पन्न हो गए, वो तो निरंतर उत्पन्न होने वाले जो आउली के असंख्यात विभाग प्रमाण समय उन तक ही निरंतर उत्पन्न होते, बीच में गैप पड़ेगी क्योंकि उनका भी अंतर्मूर्त प्रमाण जो कुछ आयु है ही नहीं उनकी, आउली के असंख्यात विभाग प्रमाण उनकी आयु नहीं, उनके यथायोग्य अंतर्मूर्त उनकी आयु है ही है। तो ये पहली बैच और ये लास्ट में बैच है, तो इन्होंने जो परमाणु का ग्रहण शुरू किया था उनकी भी पर्याप्ति शुरू हुई थी, उसके कारण जो परमाणु ग्रहण होते गए हर समय होते गए अब ये जो लास्ट में आए हैं उनका भी यही शरीर कहलाएगा, वो लास्ट में ज्वाइन हुए हैं। शास्त्र में ये बात आई थी जैसे कुटुंब में जो कोई
बड़ी
कमाने वाला हेड ऑफ द फैमिली है, और फिर उसके बच्चे भी, वो फैमिली का उत्पन्न उसका भी, उसका उत्पन्न कहलाएंगे, वो भी उतना ही,
वो भी उपार्जन करेगा ना। नहीं नहीं, वो पैसा कमाएगा ना धीरे
धीरे। पैसा नहीं कमाएगा मगर वो पैसा सबके लिए वही कहलाएगा ना, फैमिली का इनकम कहलाएगा ना उसका, क्योंकि हाँ नहीं उल्टा तो उसके अनंत विभाग प्रमाण है।
देखो शरीर के औदारिक शरीर के परमाणु है, वो प्रत्येक शरीर से तो अनंत गुणा,
एक जीव के कितने परमाणु है, अवयव से अनंत गुण।
हाँ, और यहाँ पे अनंत जीव है तो अनंत इंटू अवयव से अनंत गुणा औदारिक शरीर के परमाणु हो जाएंगे, इसे मेरा क्वेश्चन है।
नहीं होने चाहिए, आप हमारे भी नहीं होते इतने।
नहीं, प्रत्येक शरीर के तो अपने अपने औदारिक शरीर का उदय है और उसके औदारिक शरीर,
अरे इनका उदय सबका साधारण नाम कर्म का उदय है ना, तो एक ही शरीर सबके लिए कॉमन है। और औदारिक शरीर में परमाणु कितने होते, तो अभयों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत वे भाग, तो सिद्ध राशि जीवों के अनंत वे भाग प्रमाण होती है, और उसके अनंत वे भाग परमाणु है औदारिक शरीर के, और उतने परमाणु
वो डिवाइड करते हैं,
वो जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीवों में डिवाइड हो गए, डिवाइड हो गए ना, उसको डिवीजन नहीं करनी है, वो सबके लिए कॉमन है, बस इतना ही।
क्योंकि मैं इसे अभी तक ऐसे समझ रहा था कि अनंत जीव है, उसका औदारिक का पुंज एक ही गिनना है,
एक ही, देखो देखो एक ही है, परंतु उन्होंने यहाँ समझने के लिए उनके भी हर एक के शरीर के परमाणु अलग अलग गिने हैं। हाँ, वो तो जुदे जुदे है, हाँ ऐसा ही है एक्चुअली, पर उसके सामने वो नहीं के बराबर है, परंतु यहाँ सबके एक के इतने, तो अनंतों के कितने, उन्होंने बताया सबके लिए औदारिक के एक है और तेजस कारमान के जुदे जुदे हैं, परंतु वो अनंत गुणे हैं, इसलिए वो नहीं के बराबर हम कहेंगे उसके बाद औदारिक शरीर के
परमाणु,
परंतु हर एक के लिए वो कैलकुलेशन के लिए उन्होंने गिने हैं, इतना तो अभी हम लेके चलते हैं। अभी हाँ जुद ऐसा जो हम कॉमन करके बताया, ये तो वो जो आगे वाले शरीर तो अनंत गुणे और उसको विश्व सोपचेत्र कितने हैं, तो कैलकुलेशन तौर पर उन्होंने एक के लिए इतना है तो अनंतों के लिए कितना है, ये कैलकुलेशन किया है, बस इतना है। पहले एक जीव के लिए कितना है, फिर एक देह में अनंत जीव है तो उनके लिए कितना है, और ऐसे एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण देह होते तो एक पुलवी में कितना है, यानी एक पुलवी का पूरा द्रव्य कैलकुलेट किया उन्होंने।
तो यहाँ पे पुलवी तक लिया तो हम लोग तो पूरा स्कंद लेना पड़ेगा ना अंदर।
अभी हमें पढ़ा कहाँ है, अभी अभी पढ़ने दो ना, अभी अब अभी पुलवी तक आए हैं। देखो देखो नीचे से चौथी लाइन पेज नंबर 165, उसे असंख्यात लोक प्रमाण एक बादर निगोद वर्गणा शरीरों से गुणित करने पर, पहले एक जीव का पुंज निकाला, फिर ऐसे एक निगोद देह में अनंत जीव होते हैं तो एक निगोद देह संबंधी पुंज निकाला, उसमें अनंत जीवों के कर्म तेज सब का ले लेना, फिर ऐसे एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद के देह होते हैं इसलिए उसको असंख्यात लोक से गुणा किया करने पर एक पुलवी का द्रव्य होता है। यहाँ तक समझ में आए ना, पुनः आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलवी शलाकाओं से गुणित करने पर, ऐसे नंबर ऑफ पुलवी कितनी होती है, तो आवली के असंख्यात वे भाग सबसे जघन्य बादर निगोद वर्गना होती है, हमने देखा था सबसे बादर निगोद जघन्य वर्गना में आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही पुलवी होती है, अन्यत्र जहाँ हम उत्कृष्ट में चले जाएंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी होती है ऐसा कहेंगे। और ये कहाँ होती है, सबसे बादर जघन्य तेजल आपको इमेजिन कर सकती है, जघन्य बादर निगोद वर्गणा, जहाँ बादर निगोदों का प्रमाण कम है, मिनिमम है। ब्रह्मा आर्य चौदहवें के अंत में प्रत्येक शरीर वर्गणा है, बारहवें के अंत में क्षीण कषाय रूप से आए हुए, शपित कर्मांशिक रूप से आए हुए क्षीण कषाय के अंतिम समय में, पुनः इसमें से एक अंक के कम कर देने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गणा का प्रमाण होता है। यानी इसके पूर्व वाली, बिटवीन प्रत्येक शरीर और बादर निगोद। और इसमें उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना का भाग देने पर कर्म और नो कर्म के विश्रसोपचय सहित उपरिम पुद्गल पुंज में से अधस्तन पुद्गल पुंज सदृश है, इसलिए निकाल कर ऊपरी मावली के असंख्यात विभाग से गुणित असंख्यात लोकों से अधस्तन असंख्यात लोकों के भाजित करने पर असंख्यात लोक लब्ध आते हैं।
ये द्रोहस्कंद की बात है ना? द्रोहस्कंद का उत्कृष्ट बता रहे, ध्रुवशून्य वर्गना का उत्कृष्ट प्रमाण बता रहे।
नहीं नहीं एक मिनट, अभी नंबरिंग नहीं आ गया है। पुनः इन असंख्यात लोकों को पहले के पलने के असंख्यात विभाग से गुणित करने कर इनका सब जीव राशि में भाग देने पर अनंत लोक आते हैं। और इनसे सर्वोत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना के गुणित करने पर उत्कृष्ट ध्रुवशून्य रूप से अधस्तन सब ध्रुवशून्य वर्गनाएं होती है। अभी ध्रुवशून्य वर्गनाएं कितनी होती है उसकी बात है। यह अधस्तन ध्रुवशून्य वर्गना जो है जो 18 नंबर पर की कौन सी थी, प्रत्येक शरीर वर्गना के बाद और बादर निगोद वर्गना के पूर्व में जो दूसरी ध्रुवशून्य वर्गना है वो अनंत लोक उसका गुणकार बताया था पेज नंबर 165 पर तीसरी लाइन में। वो अनंत गुणा अनंत लोक कैसा आया उसके लिए पूरा का पूरा यहाँ तक 166 पेज के पहले पैराग्राफ में बताया है। तो कहते हैं ऐसा करने पर अनंत लोक आते हैं, ये पांचवी लाइन में आ गए। ये अनंत लोक कैसे आता है उसके लिए क्या क्या किया उन्होंने, क्योंकि उससे वो कितने गुना है ये बात है ना। यानी ध्रुवशून्य वर्गना जो प्रत्येक शरीर वर्गना जो उसके भेद देखे हमने कितने देखे थे कि 16 नंबर से 17 नंबर कितना था, तो सोलह वाला ध्रुवशून्य था और उससे प्रत्येक शरीर वर्गना 17 नंबर पर थी, वो असंख्यात गुणी थी। फिर से प्रत्येक शरीर वर्गना टोटल कितनी होगी, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक जितने भेद हो गए वो कितनी है, उसके पूर्व वाली से असंख्यात गुणी, यानी होती तो अनंत है, पूर्व वाली 16 से 17 नंबर अनंत गुणा है। अब 17 से या 18 कितना है, तो कितनी अनंत गुणा है, कितना अनंत गुणा है, तो अनंत लोक प्रमाण अनंत गुणा है इतने उसमें। और उसके लिए पूरा उन्होंने उसके लिए क्या किया, पहले प्रत्येक शरीर वर्गना का उत्कृष्ट भेद बताया, फिर बादर निगोद वाला उसका जघन्य भेद बताया। जघन्य भेद किसके, के एक जीव के इतना, एक देह में इतना, एक पुलवी में इतना, तो जघन्य में आवली के असंख्यात विभाग पुलवी होती है तो उसमें कितना, यानी यहाँ उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना और यहाँ जघन्य बादर निगोद वर्गना, तो जघन्य बादर निगोद वर्गना में एक कम करो वो क्या होगा, उत्कृष्ट ध्रुवशून्य होगा। तो अभी हमें इससे वो कितने गुना है तो उसके भेद मिलेगा। समझ में आई बात यहाँ पर,
ये अनंत लोक प्रमाण है।
हाँ, उसका गुणकार अनंत लोक होता है। ये हम 166 पेज पर आना, अभी पेज नंबर 160 पैराग्राफ के लास्ट लाइन पढ़ेंगे हम, अंतिम वाक्य। हाँ, ये इनके भेदों की बात है। अभी हमने प्रत्येक शरीर और बादर निगोद के बीच वाली जो ध्रुवशून्य उसमें कितने होते हैं भेद, तो अनंत लोक प्रमाण भेद है, यहाँ तक आ गए हैं। ये अनंत लोक प्रमाण भेद नहीं, पूर्व से वो अनंत लोक गुणा है, गुणकार अनंत लोक है।
तो इसका भी
गुण कारण वो उतने होंगे। तो कहते ये पांचवी लाइन पढ़ रही हूं मैं, पुनः इनसे इनसे यानी अनंत लोक से सर्वोत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा के गुणित करने पर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य रूप से अधस्तन सब ध्रुव शून्य वर्गणाएं होती है। सब यानी उत्कृष्ट के अधिस्थान यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की सब,
ये सब में सभी ध्रुव शून्य वर्गण लेनी पड़ेगी।
सभी यानी कौन सी?
ये जो अभी जो प्रत्येक शरीर के आगे वाली जो देख रहे हैं,
हाँ, वो सभी एक एक परमाणु से बढ़ती हुई, वो सभी यानी उसके सारे भेद आ गए उसके अंदर। वो उसका नाम है दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा। सब ध्रुव शून्य वर्गणा यानी दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा में से सारे भेद, उसका अर्थ थे सब। सभी भेद ने जघन्य से उत्कृष्ट तक के, समझ में आई बात? हमें 17 से 18 कितना गुना है तो अनंत लोक से गुना है। प्रत्येक शरीर में जितनी जहां तक हम पहुंच गए हैं उससे
आगे
आगे वाला जो भेद है 18 नंबर का, वो कितने गुना है तो अनंत लोक गुना है। इसलिए क्या कहा, सर्वोत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा का जो प्रमाण था परमाणुओं का
उससे
उसको अनंत लोक से गुणा करो
तो ध्रुव शून्य वर्गणा का
तो उसका अंतिम भेद मिलेगा। तो उसी के उतने भेद हो गए बीच में, हाँ इतने भेद हो गए। यहां तक समझ में? यहां पर अभी कोई दूसरा मत बता रहे, कितने ही आचार्य
उसका एक्सप्लेनेशन,
हाँ 18 के चल रहे हैं, हाँ यानी दूसरी ध्रुव शून्य वर्गणा के भेद इतने हैं ये बता रहे हैं। अभी इसके में कोई अन्य मत है उसको भी बता रहे हैं। यहाँ पर कितने ही आचार्य उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा से उपरिम ध्रुव शून्य एक श्रेणी असंख्यात गुणी है और गुणकार भी घनावली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है ऐसा कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता। अन्य जो कोई मत है वो नहीं घटित, क्योंकि संख्यात या असंख्यात जीवों से जघन्य बादर निगोद वर्गणा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यानी एक देखो, हमने जो एक या दो काउंट किए थे वो तो हिसाब करने के लिए बताए थे, अभी हमने देखे थे ना, क्योंकि तो एक या दो, क्योंकि एक निगोद शरीर में अनंत जीव है तो एक निगोद जीव उसके दो निगोद संख्यात असंख्यात जीवों से तो निगोद वर्गणा होती नहीं है। आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलवियों के बिना जघन्य बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती। या क्या कहना चाहते, छोटी में छोटी जो बादर निगोद वर्गणा का अर्थ क्या है, इतने निगोद देहों का पुंज इकट्ठा होगा ही होगा, केवल एक निगोद शरीर कहीं उत्पन्न हुआ ऐसा भी कभी नहीं होगा। यानी वो जो देहों के पुंज कितने, उसको जिसको पुलवी कहते हैं, तो मिनिमम पुलवी भी आवली के असंख्यात भाग प्रमाण होगी ये इनका कहना है। मैक्सिमम तो असंख्यात लोक प्रमाण होती है एक स्कंद में या एक आवास में अंडर में, यहाँ तो मिनिमम वाली बात चल रही जो 12वें गुणस्थान के अंत में हमने देखे थे। तो कहते फिर से कि आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुलवियों के बिना जघन्य बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती।
तो हम लोग जो अनंत पुद्गल परावर्तन देखते हैं तो हम लोग ये चरम शरीर के ये शील कसाई के अंत में जो है वहाँ पे भी हम लोग उत्पन्न होके आए हैं। पुद्गल पर
कुछ सुख मिला क्या? उनका ये कहना है कि हमने इतने पुद्गल परावर्तन करके आए हैं। आओ प्रश्न क्या उनका, हमने इतने पुद्गल परावर्तन किए अनंत, हाँ, सारे पांचों परावर्तन किए हैं, यानी हम निगोद रूप से फेंके नहीं थे,
केवली के शरीर में उत्पन्न हो क्या
है? तो हम केवली के मत कहो, अक्षीण कषाय के कहो, अक्षीण कषाय के कहो ना, यानी मुनिराजों के भी देह में उत्पन्न हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? अरे पूरे लोक में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं छोड़ा है कि जहां हमने अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया है। अभी पूरे लोक में निगोद रूप से भी उत्पन्न हुए होंगे कि नहीं?
हाँ।
आपका प्रश्न है कि जो अभी केवली होने वाले हैं, बारहवें गुणस्थान में क्या होता है, प्रत्येक शरीर में वहां जो प्रत्येक जीव के, अब ये मुनिराज है,
निगोद शरीर होते,
उनके शरीर के आधार से भी निगोद थे, हर समय में अनंत जीव उत्पन्न भी होते थे और उसमें अपना अपना जीवन काल करके मरते थे। बात सही है नहीं है? तो हम भी कभी किसी बारहवें गुणस्थान वाले के शरीर में उत्पन्न हुए थे कि नहीं थे? हम कहेंगे अनंतो बार थे। तो उसमें कुछ सुख मिला कि नहीं मिला? वो तो इतने ध्यान में लीन थे, अभी अरिहंत होने वाले, उसके पूर्व समय में हम उनके शरीर में हैं, तो क्या सुख मिला? अरे जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, कहाँ लोकाग्रह में, वहां पर भी सूक्ष्म निगोद रूप से हमने अनंतों बार जन्म लिया है, जहाँ सिद्धों के प्रदेश है। तो वहाँ अभी तो हम सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं, वहां से कोई परमाणु आते, कोई ऑरा आता है, हमको सुख होता है, हमारा कार्य होता है, मानते हैं। अरे वहां तो वो तो वहां कब के चले गए वहां से, फिर भी उस स्थान पर जाने से हम उसकी महिमा आती है और उन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया उसकी बात करते हैं। पर जहाँ एक्चुअली सिद्ध भगवान विराजमान है अंतिम, अभी लोकाग्रह के शिखर में अभी चल रहे हैं ना, द्रव्य संग्रह में बात अपनी चल रही, तो वहाँ इतने अनंत जीव है और वहाँ भी हम होके आए हैं, तो कितना सुख मिला था, ये मैंने पूछना।
हम अश्विन भाई से पूछते हैं, आप फॉरेन गए थे ना, आप फॉरेन रिटर्न है लेकिन साथ साथ में आप सिद्ध शिला रिटर्न भी है।
देखो एक ही क्षेत्र में अनंत
जीव है। मैं तो ये
कहूंगा
कि जहाँ सिद्ध विराजमान है वहाँ जो कोई अवकाश होगा वहाँ पर भी ये सूक्ष्म निगोदिया होके आए,
सर्व
सूक्ष्म एकेंद्रीय होके,
सारे पांचों प्रकार के सूक्ष्म जीव है वहाँ पर, वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ये वनस्पति का एक, में तो निगोद लेना है।
अभी तो हम इतना नक्की कर सकते कि सिद्धों के पास अनंत सुख है तो हमें कितनी प्राप्ति हुई।
देखो जो पर्याय में है जी, उसके अपने भावों का उसका वहाँ वेदन चल रहा है, वो उसे दुखी है, कर्म के कारण भी नहीं कहेंगे, जीव के अपने भावों से वो दुखी है, अपने मोह राग द्वेष वहाँ चले, मिथ्यात्व है तो दुखी है ही है। और हम सुख के लिए क्या करते है? संयोगों में हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं,
गलत मान्यता करते हैं,
तो कितना कर सकते हैं? अरे परद्रव्य की परिणति अपने हाथ में ही नहीं है, क्या करें?
सब बाजू से गला पकड़
गया। क्वेश्चन नहीं पूछते,
हमने स्वयं अपने मान अटका लिए उसमें। हाँ देखो ये देखो, ये तो केवली के ज्ञान में क्या क्या आया है उसका वर्णन चल रहा है। तो एक देह में इतने अनंत जीव है, निगोद के एक शरीर में, ऐसे निगोद के ऐसे सिंगल सिंगल शरीर किसी के ऐसे आधार से नहीं है, वो बंच ऑफ शरीर हो गए हमेशा, वो बंच को हम पुलवी कहते हैं, ऐसे मिनिमम भी वो ऐसी पुलवी भी, उन पुलवियों का भी बंच होता है, वो ऐसी मिनिमम पुलवी भी कितनी पाए जाएगी जो बारहवें गुणस्थान के अंत में हमने देखा था, तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये मिनिमम वाली है। देखो यहाँ क्या कहते हैं हम, पेज नंबर 166, यहाँ नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं लाइन, आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण, पुलवियों के बिना जघन्य बादर निगोद वर्गणा नहीं उत्पन्न होती। उसका अर्थ क्या है? बादर निगोद वर्गणा किसको कहेंगे? किसके किसी के आधार से बादर निगोद रहते हैं, सूक्ष्म निगोदों को किसी आधार की आवश्यकता नहीं, अंतराल में सर्वत्र है, मादर निगोद किसी के आधार से रहते, किसके आधार से रहते हैं मनीषा बेन? मादर निगोद उनके जो देह उत्पन्न होते हैं किसके आधार से रहते हैं? हाँ प्रत्येक, कौन से प्रत्येक? देवनारकी के नहीं, पृथ्वी अग्नि का एक, औदारिक शरीर पृथ्वी का एक को भी है, अग्नि का एक को भी है, जल का एक को भी है, उसके आधार से निगोद रहेंगे क्या? हाँ उससे नहीं रहेगी, तो किसके आधार से रहेंगे? या वनस्पति के, या द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय असंगी संगी पंचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्यों के शरीर के आधार से। यहाँ तक नक्की हुआ ना? तो कहते वो तो एक दो देह नहीं हो गए, तो हमने इतने हो गए, तो मिनिमम भी इतने हो गए। और वो कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षीण कषाय के अंतिम समय में, जो नेक्स्ट समय में केवल ज्ञान यानी तेरहवें गुणस्थान में पहुंचने वाला जीव है, उनके शरीर में से सारी निगोद राशि चल ली जाती है, अपनी अपनी आयु पूर्ण करके निकल जाती है, नए उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ उनकी संख्या मिनिमम पॉसिबल है। तो मिनिमम होकर भी पुलवियाँ कितनी है? अवली की असंख्या के बाद, और एक एक पुलवी में देह कितने हैं? असंख्यात लोक, और एक एक देह में जीव कितने हैं? अनंत। कितने अनंत?
अपव्यक्त अनंत गुणा और
सिद्ध। अरे नहीं, सिद्धों से अनंत गुणा। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं जो तीन काल में सिद्ध नहीं होंगे। टोटल जीव राशि का असंख्यात्वा भाग प्रमाण अभी हमने देखा ना, यानी उसकी अनंतता ख्याल में नहीं आती हमको। देखो ना, एक निगोद शरीर तो ऐसा कहीं एक ही निगोद शरीर उत्पन्न हुआ ऐसा तो होगा नहीं, यानी ये तो मिनिमम की बात चल रही है।
सोशलिज्म।
हाँ देखो, हाँ सिद्ध नहीं, नहीं सिद्ध पूरे जीव राशि से अनंत विभाग प्रमाण है, और निगोद राशि टोटल जीवों के एक निगोद, एक निगोद शरीर में
असंख्यात विभाग प्रमाण
जीवों के असंख्यात
विभाग प्रमाण जीव एक निगोद शरीर में देखते हैं।
और ऐसे निगोद शरीर कितने हो गए? पांच बार असंख्यात लोक लिखकर आपस में गुणा करो, इतने हैं
वर्गित सबसे,
क्योंकि उसमें वो अंडर आवास पुलवी वो सब ले लेना, स्कंद अंडर आवास पुलवी और देह, और फिर देह में जीव, क्योंकि जीव अनंत रटते परंतु कहाँ रहते इतने अनंत जीव। निगोद जीव कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो द्विंद्रियादि के शरीर जिसको हम मांस कहते हैं, ये मांस मदिरा वो मधु सब में यही दोष आता है। दूसरी बात, आलू है प्याज है सारे कंदमूल है, केवल जमीन के नीचे, इसलिए उसका अर्थ नहीं है कि उसी में होते हैं,
थोर में होते हैं
ऊपर, वो थोर यानी वो एलोवेरा भी, कैक्टस टाइप की सभी वरायटी वो निगो अरे ये शरीर में तो है ही है ना। अभी शरीर का कोई भी हो, वो हड्डी हो मांस हो उसका खून हो कहीं भी, उसमें सब में निगोद राशि भरपूर पड़ी है।
मरने के बाद भी चले जाते
हैं, मरने के बाद भी त्रस जीव उत्पन्न होते, त्रसों के शरीर में भी निगोद है कि नहीं है? देखो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी के आधार से कल ही वो आया था ना कुछ चल रहा था टीवी पर कि तो वो तो कंपोजिशन चालू हो जाता है अंदर के एक एक अवयव में, तो उसमें कितने जीव आपने देखा होगा ऑटोप्सी रूम में वो पोस्टमार्टम करते हैं ना, जरा दो दिन तीन दिन होने जाओ इतनी इतनी बड़ी बड़ी ईयड़ पूरे शरीर में घूमती रहती है।
क्या हम लोग ने देखा ना लेदर हम लोग जो पहनते हैं उस पे कंटिन्यूस
लेदर भी है, क्योंकि जीव तो निकल गया है वहाँ, किसी पंचेंद्रिय के या कोई हिंसा हुई है वो तो कब का गया है, वो तो मांसपेशी है उसमें निरंतर निगोद जीवों की उत्पत्ति और उसको वापरने के कारण उसकी कदली घात से हिंसा होती है। निगोद की अपनी लाइफ तो छोटी है ही है, परंतु उनकी जितने बांध कर आए हैं जीव, जैसे हमारे आपके जो अकाल मरण हो सकता है ना किसी को बंदूक की गोली से या कोई एक्सीडेंट से, उसने आयु तो बांध दी थी 100 साल की और 25 साल में एक्सीडेंट से मरा, तो ये कैसे हुआ? तो वो इसको कदली घात कहते। तो ऐसा घात इन जीवों में भी हो सकता है, इसलिए जो लेदर सिल्क वगैरह क्यों नहीं वापरते हम, तो उसके पीछे यही कारण है, भले वो जीव तो मर गया परंतु उनके शरीर के कारण इसमें तो, क्योंकि वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कि कहीं जैसे अदरक वगैरह सूख जाती है तो उसकी सूंठ बनती है तो उसमें से तो निकल भी जाते निकल, परंतु मांस ऐसा है ये लेदर जिसको हम कहेंगे कि वो कितना सुखा कोई भी उसके ऊपर प्रोसेस करो तो उसमें कंटिन्यूस निगोदों की उत्पत्ति होती रहती है, वो मरते रहते हैं और उसको वापरने से सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म को आधार की जरूरत नहीं है, बादर है ये, सूक्ष्म को किसी आधार की जरूरत नहीं है, सूक्ष्म जीवों की हिंसा हमसे होती ही नहीं है। देखो देखो सूक्ष्म जीव कैसे है इसके भी आर पार जाते हैं ना, उसमें रहते हैं। हमने ऐसा हाथ किया, ऐसा हाथ किया तो वो जहाँ के, क्योंकि वो थ्रू एंड थ्रू उसका जो इतना सूक्ष्म परिणाम है, जैसे आपके मोबाइल की रेंज आप कहते हैं ना, बंद रूम में भी मिलती है कि नहीं रेंज? अभी कांच में से प्रकाश आता है वो कई सूक्ष्म है, अब प्रकाश से भी सूक्ष्म जो एक्सरे के रेडिएशन है, जो अन्य अन्य रेडिएशन है, वो सब क्या है? सूक्ष्म परिणाम है पुद्गलों का। ऐसे सूक्ष्म जीवों के शरीर सूक्ष्म टाइप के होते हैं, वो तो किसी भी, यानी कितना भी उसको आप एयरटाइट बनाओ, कोई भी इसके रहित उससे रहित, तो उसमें भी वो सूक्ष्म जीव तो रहेगी रहेगी। वो अग्नि से मरते नहीं है, हवा से बहलाते नहीं है, पानी में गलते नहीं है, वो अपने आयु से मरेंगे। यानी हमारे कोई असावधानी के कारण सूक्ष्म टाइप के जीवों की हिंसा नहीं होती। ये जो बादर निगोद है या बादर अन्य जीव है, हाँ, उसकी हिंसा न हो इसलिए हम सावधानी पूर्वक चलते हैं। शास्त्र में तो ऐसा ही आया है कि यदि सावधानी पूर्वक नहीं चलते हैं, अर्जुन नहीं भी मरे तो भी उतना पाप लगता है, हिंसा का पाप लगता है। और मुनिराज कैसे सावधानी पूर्वक चलते हैं, यानी हर उनकी एक्टिविटीज में, तो उनके वो कोई बाय चांस नीचे पैर ऐसे पैर रखने के जाओ और कोई नीचे आकर दबकर मर भी जाए तो भी उसका पाप नहीं है। इसलिए हमारी जो सारे चरणानियोग की जो आज्ञाएं हैं, कैसे प्रासुक विधि करना है, किस तरह से करना है, वो हमारी सावधानी को देखते हैं। ये हम जीवों के परिणामों से उसका फल मिलता है और उसके पीछे सारे ये करणानियोग के नियम है।
तो परिहार विशुद्धि जीव वाले हमें तो सावधानी पूरी पूर्वक की देते होंगे क्योंकि उनको दोष नहीं लगता है।
दोष नहीं लगता है क्योंकि उनको विशेष अभ्यास है, तो उनको मालूम है कहाँ कैसे हिंसा टल सकती है। प्रत्याख्यान पूर्व का अभ्यास किया ना तीर्थंकर के पादमूल में, कि अभ्यास ने केवल रटना नहीं है ना। जैसे हमें अभी पता है कि आलू में ये इसमें इतने 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 अनंत जीव है, तो जानकर उसको हम त्याग, फिर उसको वापरने का विचार भी नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हम के रोक लगाने पड़ती अपने पर,
यानी जानते हुए कि आलू प्याज आदि कंदमूलों में निगोदिया जीव होते फिर भी लोग खाते हैं, यानी कितने निष्ठुर होंगे।
निष्ठुर होने चाहिए
और उनको समय तो होगा कि नहीं।
और ऐसा मानते किसने देखे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने तो नहीं प्रूव किए, तो आप फिर नमोकार मंत्र क्यों जपते हो? क्योंकि नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम तो एक बार जो कहते हैं, और केवली ने जो बताया उस पर इतना मात्र विश्वास नहीं है।
नहीं,
पर जैनियों को तो मालूम है ना अनंत जीव होते हैं। इसीलिए तो मालूम नहीं, ये कोई कारण नहीं हो सकता। हमने देखा ना, मालूम नहीं, वो झेर खाने का फल तो उतना ही मिलेगा, अनजाने में विष खावे या जानबूझकर खावे,
फल दोनों का समान।
हाँ, हम उसको जानबूझकर खाए आत्मघात कहेंगे, और फिर अनजाने में फल तो उसका उतना ही लगने वाला है।
हेल्थ देखो,
जो मालूम है उसको क्या, जो दवाई भी लेते हैं वो पूछ के लेते हैं। अरे मैं प्रैक्टिस करती थी, हमारे जैनी भी आती थी, कितनी महिलाएं, डॉक्टर मुझे बताओ अभी कितने, वो लिख के देते इसमें क्या खाने योग्य क्या नहीं खाने की, तो उनको वो सब लिवर वगैरह की सब बनी हुई तो उनको बताते ये आपके लिए योग्य नहीं है। आयुर्वेदिक की गोलियों में भी कितने में गार्लिक वगैरह आता है, उनको तो ये तो देखना पड़ता है कि उसमें लिखा हुआ था ना, तो अपने को अभ्यास तो चाहिए।
शरीर के लिए योग्य है ऐसा जो कहते हैं वो मैं शरीर हूँ ऐसा,
मैं मनुष्य हूँ मैं शरीर हूँ
मैं जीव हूँ ऐसा मानते ही नहीं है, तो उनसे आर्गुमेंट क्या करें?
नहीं हाँ, परंतु औषध के लिए भी उसमें भी तरतमता है कि नहीं, कि अति जिसमें जो दोष है इसे टाल सकते हैं। हाँ, वो तो औषध के लिए छूट है ऐसा भी लेते हैं, पर औषध में भी उसकी मात्रा कम होती है, और उसमें वो मांस भक्षण या दारू के लिए वो नहीं भक्षण करता है, तो वैसी छूट हो सकती है उसके अंदर। नहीं नहीं, वो नियम लेते समय ना, जो अभी रात्रि भोजन त्याग का नियम लेते हैं, तो कोई फ्रूट्स की छूट नहीं, जब नियम लिया है तभी उसने वो मैं कितना पालूंगा इसका, इस तरह से उसको पता है कि ये मेरी कमजोरी है, मैं पूरा नहीं पाल सकता, परंतु तो क्या करने योग्य है इतना तो नक्की कर सकता है कि नहीं कर सकता।
अरविंद भाई जो बता रहे हैं, हम उनके सामने एक और दलील रखते हैं। हमारा जो चांगानी है, क्या नाम है उसका,
देवेंद्र
भाई चांगानी, अरे वो तो रात को दवा भी नहीं लेता था, तो आपको याद है कि आपको और मुझको उसके मिसेस ने बुलाया था, तुमने क्या सिखाया उसको, अरे हमने क्या सिखाया,
और वो तो वैष्णव में से वो अभी इसमें दिगंबर का फॉलो कर रहे भी, उसके कोई माँ और पिता वैष्णव
जो भी हो, यानी वो ओरिजिनल दिगंबर नहीं है। हाँ, तो यानी माता पिता में कुछ ऐसे कोई वैष्णव है,
वैष्णव एक स्थानकवासी,
कोई स्थानकवासी वगैरह वगैरह,
यानी अभ्यास करने के बाद वो सब ये इतना दृढ़ता से पालन करता है।
इस जमाने में अभी के काल में भी ऐसे जीव है कि नहीं, रात को पानी तक नहीं पीऊंगा, क्या दवा भी नहीं लूंगा,
उसको एडमिट किया तो भी फिर उसने नहीं लिया था।
तो फिर उसके मिसेस ने हमको बुलाया कि तुम आ जाओ, बोले भाई क्या है, क्या सिखाया तुमने, हमने कहा हम तो सबको बताते हैं, इसने फॉलो किया, अब उसने फॉलो किया तो वह हमारा दोस्त थोड़ी है।
यहाँ तो कितने जीव कहाँ रहते हैं इतना अगर हमको ख्याल में आता है ना, और यहाँ तो हम भगवान की पूजा करते हैं घंटे घंटे भर, और भगवान ने बताया उसके लिए बिल्कुल विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। देखो देखो, ये तो जिसने जो पालक में क्या है, त्रस जीवों की उत्पत्ति जैसा है, जैसे आप डॉक्टरों को पूछो, वो आते हैं ना एमीबा नहीं, उसमें तो वो ज्यादा जर्म्स आते हैं उसके अंदर, कि वो डिसेंट्री होती वगैरह ना, तो उसके जर्म्स उसमें ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो जमीन के नजदीक वाले हैं इसलिए। अभी जिसने उसका त्याग, सभी पाले भाजियों खाते वो हरी का दोष अलग है, और उसके उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, यहाँ त्रस है वहां निगोध है, इस तरह से। अभी आप मेथी भी ले दो तो मेथी उसमें जो सफेद लाइन वाली मेथी होती है उसमें एक एक कीड़ बैठी होती है उसके एंड में, पूरे व्हाइट लाइन्स है तो उसके आप एंड में एक डॉट दिखता है, और वो डॉट है वो एक ईयर है, क्योंकि सफेद पत्ते वाली अगर आप पानी में ऐसे छोड़ को रखे तो और बाद निकाल लो तो नीचे से लंबी लंबी ऐसे ईयर दिखती है, तो आपको जब मेथी जब चुनना है तो कितने बारीकाई से उसको देख देख कर चुनना पड़ता है। हाँ नहीं, देखो सभी, देखो उनका भी यही रहने का ठिकाना है, कोई भी सब्जी लो, कोई भी फल फ्रूट कोई भी ले, उसमें भी ये जीव उत्पन्न तो होते ही रहते ना, मटर हो या कुछ भी हो, तो हमें तो उसको सावधानी से देख शोध कर लेना है, कोई भी फ्रूट हो उसको भी देख शोध कर क्यों खाते हैं, उसमें जो त्रस जीव रहते हैं उसके शरीर के आधार से भी इतने निगोद रहते हैं। ये हमारी सारी जो पद्धतियां हैं कुकिंग की कहो, यानी मरण हुआ तो उनके देह उसमें पड़े रहते हैं ना, इसलिए जहाँ ज्यादा है उनको अवॉइड करते हैं, जैसे गोभी है, फ्लावर है, उसके अंदर भी अभी दलील करते हैं ना कि यहाँ तो अच्छे रहते हैं, ऐसा है वैसा है, अभी यथा योग्य देखना है
आपको। आप तो हमारा खाना ही बंद कर दिए फिर।
अरे आर्ग्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और यह देह, यह मैं हूँ, ये मूल मिथ्या मान्यता बनी है, क्या करें। यानी डॉक्टर अगर ऑर्डर देता है ये मत खाओ वो मत खाओ तो बिल्कुल जैसा जैसा कहा वैसा फॉलो करेगा।
अभी आपको कथा सुना तो बहुत टेंशन आ गया ना, तो हमारे रिश्ते में एक भाई साहब थे हमारे, तो हम रोजाना जब स्वाध्याय चालू किया तो बोले आलू प्याज आदि मत खाना, तो नहीं 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 आलू तो सब्जियों का राजा है, अरे हमने कहा तू राजा को ही खाएगा तो प्रजा का क्या होगा। तो फिर ऐसे ही दिन गए, एक दिन दौड़ते दौड़ते हमारे यहाँ आए, कहने लगा दिनेश भाई क्या है साहब, बोले मैंने आलू खाना छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो, क्यों क्या बात है? डॉक्टर ने कहा तेरे को डायबिटीज हुआ है, आलू खाएगा तो जल्दी मरेगा, तो जब से मैंने बंद किया। बोले यानी हाँ, डॉक्टर कहता है वो सुनना, तो जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं वो, अरे किसने देखा है जिनेंद्र है क्या नहीं, ऐसी बातें होती है।
देखो ये पैराग्राफ इतना पूरा करते हैं, हमने क्या देखा था
कि
जघन्य बादर निगोद वर्गणा में भी आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण पूर्वी होती है ना, एक दो तीन चार पांच, नीचे से पांचवी लाइन उस पैराग्राफ की, क्योंकि बादर निगोद वर्गणाए जहनियाए आवलियाए असंख्य यदि भाग में ता निगोदानम, ऐसा सूत्र का निर्देश है जो हमने अभी अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले। यानी जघन्य बादर निगोद वर्गणा में भी पुलवियों का प्रमाण आवली के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। एक एक पुलवी में शरीरों का प्रमाण असंख्यात लोक है, यानी असंख्यात लोक प्रमाण शरीरों का जो पुंज है
उसको पुलवी कहते हैं,
उसको हम पुलवी कहेंगे। एक एक शरीर में अनंतानंत कर्म नौकर्म पुद्गल भार से युक्त अनंत निगोद जीव है। क्या कहते हैं, निगोद का जो शरीर है वो एक शरीर में कौन सा भार लिए है,
कर्म
नौ कौन से भार लेकर, वो कावड़िया मालूम है क्या,
वो
क्या वो श्रावण बाल की कथा मालूम है ना,
श्रवण
वो क्या करता है, वो तो एक ऐसी बांबू जैसा होता है, उसके दोनों बाजू में वो तो वजन रखने के लिए होता है, तो उसने तो माँ बाप को बैठाया था, पर ये जो कावड़िया ने ये बीच में चला था ना, कावड़ लेके जाते भाजी वाले वगैरह, वो कावड़ में लेके माल ढोते हैं, ढोते ना वो माथे पर सिर पर भार नहीं तो ये कंधे पर भार लेके जाते। तो कर्मकांड में ऐसा लिखा है कि जैसे कावड़िया है, यानी नौकर को हम ऑर्डर करें ये माल यहाँ से लेकर वहाँ चला जाए, तो कांवड़िया यहाँ का माल उठाकर वहाँ ले जाता है, ऐसे यह जीव अनादि से कर्मों का और ये शरीरों का, कर्म और नौकर मैंने शरीर आदि सब परमाणुओं का भार लेकर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जा रहा है। यहाँ क्या लिखा देखो कि एक एक शरीर में अनंतानंत जीव है ना, तो क्या करे, अनंतानंत कर्म नौकर्म पुद्गल भार से युक्त अनंत निगोद जीव। और हम आप भी कौन है, हम तो जीव है और क्या ढो रहे हैं, ये शरीर का भार और कर्मों का भार ढो रहे हैं। शरीर से परमाणुओं से भी कर्म के परमाणु अनंतानंत गुणे हैं और उसके विश्रसोपचय अलग, और यहाँ जीव तो मैं अकेला एक हूँ फिर भी ये सारा भार ढो रहा हूँ, इतना ही नहीं ये शरीर रूप मैं हो गया मानकर बैठा है,
मजा ले रहे
अच्छा। और फिर भी इसका वजन करूँ, उसका वजन कम करूँ बड़ा हो, ये चल रहा है इसका, तो यहाँ से मरकर और चला जाएगा, यहाँ से कर्म लेके जाएगा और कहाँ जन्म ले लेगा, वहाँ यही बात चलेगी, वहाँ
नया शरीर लेगा,
नया अच्छा लगेगा वहाँ पर, और फिर वहाँ ऐसा ही चलेगा, वो भोग करके और फिर चला जाएगा। अनादि से किया क्या है उसने, यही किया और कुछ नहीं किया है। यानी सीरियसली सोचने का वक्त आ गया है, हमारी सारी प्रायोरिटी किसके लिए है, देखो सुबह से हमने एक रूटीन बना लिया, हमने हर एक का अपना अपना रूटीन है, तो रूटीन में हाँ हमको कभी कभी लगता है नहीं ये करने लायक है, घंटे भर यहाँ सुनेंगे भी, बाकी घंटे भर क्या होता है हमारा मालूम है, उपशम हो जाता है सबका नहीं क्या जब हम सुनते हैं ना साधे डेढ़ घंटा घंटा होगा तो सारे काम हम बिल्कुल, अभी यहाँ तक हमें किसी काम की याद नहीं आ रही, अभी यहाँ बंद होते ही क्या होता है वो सारे उसकी उदीरना चालू होती
नवकार मित्र चालू हो जाते तभी चालू
ऐसा देखो ना, फिर वो दिन भर तो फिर वो यही बात चलती रहे, इसलिए इतना भी तो हम यहाँ जो हम सोच रहे या जो सीख रहे हैं, दिन में वो अन्य काम भले चलते रहो पर ये तो निरंतर अपने
उपयोग
ज्ञानों में यही चलना चाहिए, क्योंकि अनंत अनंत काल का ये संस्कार चल रहे, हर एक देह में गए देह से आत्मबुद्धि एकत्व बुद्धि चल ही रही है, अब सारी जो एकत्व बुद्धि है वो उसके लिए कितना बड़ा प्रहार उसके ऊपर चाहिए, वो मान्यता के ऊपर चले। अन्य कोई व्रत आदि करने की बात ही नहीं यहाँ पर। जैन धर्म में तो कहीं पर भी पहले व्रत करने का उपदेश ही नहीं है, पहले में पहले ये जो मिथ्या मान्यता अज्ञान है वो छोड़ने की बात है। और हम सारे वो बाहर से कुछ कर लिया तो हमने कर लिया, हम धार्मिक हो गए ऐसा मान के बैठे है ना। देखो क्या कहते हैं, अनंतानंत कर्म नो कर्म पुद्गल भार से युक्त अनंत निबोध जीव है, क्योंकि आत्मा का प्रत्येक देश, क्या कहा है, प्रत्येक प्रदेश पर है कर्म, वो आठ प्रदेश मुक्त है ऐसा नहीं कहीं लिखा है ना। आत्मा का प्रत्येक देश अनंत कर्म परमाणुओं से बद्ध है ऐसा वचन है। ऊपर लिखा है देखो प्राकृत में, प्रत्येक प्रत्येकम आत्मदे प्रत्येक प्रत्येकम आत्मदेशाह कर्मावयवई ही, यानी कर्म के अवयवों से अनंत कई ही बद्धाः, कि आत्मा का प्रत्येक देश अनंत कर्म परमाणुओं से बद्ध ऐसा वचन है, इसलिए अनंत लोग गुणकार है यह वचन ही ग्रहण करना चाहिए। ये पूरा का पूरा 17 से 18 नंबर अनंत लोग गुणा क्यों है उसमें ये सब बातें आई। हमें लगता है केवल अल्पभूत जानने से क्या होगा, इससे कितना गुना है कितने गुना, देखो उसमें से कितनी बात निकली। 166 लोग पूछते कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, अभी जब पढ़ते तो भी याद नहीं रहता कहाँ क्या लिखा है ना,
कहाँ लिखा इधर ही रहते
हो ना। हाँ देखा, एक शंका समाधान पढ़ लेते हैं। इतना शंका, उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा के विश्रसोपचय का गुणकार चूंकि अनंत है और जघन्य बादर निगोद वर्गणा विश्रसोपचय से जघन्य है, अतः गुणकार पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यह घटित हो जाता है यानी नहीं हो जाता है, यानी वो प्रश्न पूछना है ना, यह नहीं घटित होता है ना, यही घटित होना चाहिए ऐसा उनका कहा। नहीं शब्द डालो बीच में ब्रह्मा, क्योंकि ऊपर प्राकृत में यह घटित नहीं हो जाता यह प्रश्न है, ऊपर है ना सेकंड लाइन प्राकृत। हाँ, गुणगारोति न घड़े ऐसे शब्द है ऊपर प्राकृत में, क्या ऐसा नहीं होता, ये उनको के होना चाहिए ऐसा नहीं, समाधान है नहीं, क्योंकि इस प्रकार जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा से उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा से वर्गणा के अनंत गुणे प्राप्त होने का प्रसंग आता है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि गुणकार पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है ऐसा गुरु के उपदेश से जाना जाता है। यानी उसमें भले जघन्य में भी अनंत परमाणु है और उत्कृष्ट में भी अनंत है, परंतु जघन्य से उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात वे भाग गुणा है, गुणा है कि उससे अधिक है,
नहीं गुणा है ना,
गुणा है गुणा है, ये हमने 432 का रेफरेंस लिखा है, आगे रेफरेंस फॉर 432 कुछ लिखा है। देखो देखो जघन्य भी बराबर है, ये लिखा है वो बराबर। हाँ, जघन्य में अनंत परमाणु है, उत्कृष्ट में भी अनंत परमाणु, तो जघन्य से उत्कृष्ट कितने गुना है, असंख्यात गुना है, कितना असंख्यात, पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण असंख्यात। अब हम यही रुकते हैं क्योंकि आगे वाला शंका और उसका समाधान बहुत बड़ा है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं